नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।